आदि, काकी, सैनी, नागी, भुजंगा आदि, यानी ऐसी भीमा, भयंकरी, काली, चंडी नाम वाली कन्या के साथ, जैसे गंगा, जमुना आदि, इन ये नाम हो, उससे शादी लड़की से नहीं करें। आगे देखो, विवाह का समय और कौन कौन सा अच्छा है, क्या बता के 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक का, 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या और 25 वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। क्या बताया है कि 16वें वर्ष से लेकर और 25वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष, यानी लड़की का 16 से लेकर 25 के बीच की से लड़की का शादी और 25 साल से लेकर 48 वर्ष के का विवाह उत्तम है। आगे देखना, और इनकी फिर नारी नारी डिग्री बताई है कि जैसे इनमें से जो 16 और 25 में विवाह जो तो निष्कृष्ट है, यानी 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का लड़का, ये तो घटिया योग है। 18 और 20 वर्ष की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का जोड़ा मध्यम है, काम चलाऊ। यानी 18 से लेकर 20 वर्ष तक तो लड़की और 30 से लेकर 40 वर्ष तक का आदमी का भी जोड़ा काम चलाऊ है, और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष का पुत्र पुरुष का विवाह उत्तम है। 24 साल की लड़की और 48 साल का बुढ़ा होना इनका वो सबसे उत्तम योग है। आगे देखो, और ऐसे करने से सबका कल्याण होता है। अब थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज्यादा तो ऐसे ही शर्म आती है ज्यादा दिखाने में, थोड़ा सा आपको और दिखाएंगे, जिससे तो कहते हैं ना, बस पूत के पैर पालने में पिछड़ जा। अब देवर की परिभाषा दी है महर्षि जी ने, देवर की, जिस विधवा का देवर अर्थात पति का छोटा भाई न हो तो नियोग किसके साथ करे, उत्तर देवर के साथ, परंतु देवर का शब्द जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। देखो, देवर उसका उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति या छोटा भाई या बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण का, अपने से उत्तम वर्ण वाले को जिसको जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। अब नियोग का क्या अर्थ रखा इन्होंने, नियोग का क्या अर्थ बताया है कि विधवा स्त्री शादी नहीं करे किसी दूसरे से, विधवा स्त्री का विवाह नहीं करना चाहिए। अब मुझे शर्म आती है इस टॉपिक को आपको बताते समय, वो किसी और अन्य जिसकी पत्नी मर्गी हो ना उसके साथ नियोग करे। नियोग कैसा होता है अब इसका वर्णन भी मैं आपको नहीं कर पाऊंगा, नहीं बताना चाहूंगा, ऐसा गंदा शब्द लिखा है इन्होंने, इसका वर्णन नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और दिखाता हूं साधारण सा, और भी इसमें ऐसी अभद्र भाषा लिखी है कि जो आम समाज को बताए, पढ़कर भी नहीं सुनाया जा सकता, ऐसा इसने कर्म लिखा है। एक अन्य का ज्ञान नहीं था महापुरुष को, ये देखना। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष, यहां लिखा है, और कीर्ति के लिए गया हो तो 6, धन आदि धनादि कमाने के लिए बाहर गया है, दूर देश में प्रदेश गया है, धन कमाने के लिए रोजगार वश यदि बाहर गया है तो 3 वर्ष बाट देख कर नियोग कर ले, नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और जब विवाहित पति आवे तो उस नियुक्त पति ने छोड़ दे। रे तेरा गजब भैया, हे भगवान, लोके बाहर देश में अगर किसी विदेश में पति चला गया तो और किसी पति के साथ बच्चे पैदा कर ले और उस नए पाछा उसने छोड़ दे, और वो बच्चे फिर उस पति के होंगे, वो गोत्र होगा। अरे तेरा गजब भैया, ये काम बिगाड़ रखे 3 साल। और फिर कहा कि किसी का लड़की लड़की होती हो, ये देखना, जिस स्त्री के केवल कन्या कन्या होती हो, 8वें संतान होकर मर जा, 10वें जब 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 हो तब तब कन्या पुत्र ना हुए तो तो ग्यारहवें और दो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो तो शब्द यानी तुरंत उसको छोड़कर दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जिसे की किसी की पत्नी लड़ाई लड़ुई करे उसने छोड़ दे, और जिसकी पत्नी का लड़की लड़की होती हो लड़का ना हो उसने भी छोड़ दे, और किसी के दोना दूसरी से पत्नी पुत्र पुत्र पैदा कर ले। बताए इतनी अकल थी उसमें। अब यहां देखो, किसी की पत्नी अप्रिय बोलने वाली हो, वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदाई हो उसे तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाए भागी संतान उत्पत्ति कर ले। वे बता हे भगवान, नौका किसी का पति लड़ाई झगड़ा करता हो ना, भाई दुख दुख देता हो, दूसरे पति तक संतान करके रख उसकी छाती पे और उसे के दाए भागी पैदा कर दे। अरे तेरा गजब हो हे भगवान। ये देखो, ये दिल लिख रखे हमारे समाज सुधार के नियम महापुरुष ने, संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाए भागी संतान कर ले वे, और इत्यादि प्रमाण कर और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति कर ले। और आगे और ऐसा जुर्म लिखा है जो मैं आपको नहीं सुना सकता। अब कहने का भाव ये है दास का कि जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा, या ऊपर तो मोर महर्षि की है, अंदर ऊपर तो मोर अमेरिका की अरमाल अफ्रीका का, तो यही दिखाना चाहूं था कि इसने खोल कर देखेंगे तभी इसे मन हटेगा, फिर यू आपको ऐसा गंदा शास्त्र लगेगा। ये भगवान, यू तो किसी और का भी दृष्टि ना पड़ जाना चाहिए तो काम कति बिगाड़ देगा। जिस घर में लड़ाई ना होगी उसमें शुरू हो जाए इसके ऊपर जरा सा भी आचरण। शुक्रवार तो किसी समझ में कोई नहीं आया, मैं ऋषि का लिखा हुआ था, जो रखते थे ना इन्हें बेचनिया ने बिना बेरा था, इसमें लिख के रखा है। यू तो ई पोल पार्टीज की, अब थोड़े दिन में देख लियो योग्य दवा भी दी गया, जब भी नौकर फूक बीमारी ने एक लो दर्द उठा के। तो ये ज्ञान दास इसलिए दे रहा है, बेशक किसी को बुरा भी लग रहा होगा कि भाई क्यों दूसरे की निंदा करें, नहीं निंदा नहीं है, ये तो एक तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा का एक विशेष विधान है, और जब तक संत ही नहीं बताएगा तो विद्यार्थियों को क्या पता लगेगा। इसमें दो दुना छह लिख रखा है, एक 20 लिख रखा है, तो अध्यापक का ये प्रथम फर्ज होता है कि वो सिलेबस अनुसार साधना करवा के बच्चों को सफल करवावे। बोलो सतगुरुदेव की। कर जोर विनती करूं दरों चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी दाम, कुत्ता तेरे दरबार का मतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जाखे चोहा जाऊं मैं, तो करो तो हो बावरो दूर दूर करो तो जाऊं, जा रखो तो ही रहूं जो देव सुखा। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे, भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो भी धन्यवाद, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता हूँ, जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो, सतगुरु आप न भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। फिर तुम्हारे विचारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरज मुनि नारद इनके हृदय न समान, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का तक न दूजी ठोरे, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी। कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी का। बंदे तो कर बंद की जय चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का ये मिलन बारंबारे। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंते, रावण सरीखे कौन गने ऐसे गए अनंती। राम रटत कोड़ी भला चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जिस मुख नाही नाम। राम रटत कन्या बली साकट बलों ने पूती, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारी दरबलों बावे टूटी घर की छानी, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। आजा बंदे शरण राम की फिर पीछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम फिर पाछे पछता। बालू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावे, बालू की भीत पवन का खंबा कब। आज मैं तेरे गट लेंगे रतु राम कहे ना पावे, आज मैं तेरे तू राम कहे ना पावे। गावाई आजा बंदे गावाई आजा बंदे शरण राम की फिर। काल बलि तेरे सिर पर बैठा दूजा पकड़ ले जावेगा, काल बलि तेरे मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लगावेगा, मात पिता तेरा गावाई आजा बंदे शरण राम की फिर। गावाई आजा बंदे धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। धर्म राय तेरा वहां क्या बात बनावे, लाल खंब से बंधा जागा, गन सतगुरु को छुटावेगा। भाई लाल खंब से बंधा जागन सतगुरु को छुटावेगा। भाई भाई आजा बंदे शरण राम की, दिया लिया तेरे संग चल गए दरा क्या रे जावे, दिया लिया तेरे संग चल गा दराज क्या रे जा। कहे कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा। भाई आजा गा भाई आजा बंदे शरण राम की, सत साहिं आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। ये बालू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। इस शरीर को पांच तत्वों से बने हुए इस पोतले को परमात्मा ने इतना नाजुक बताया है कि इसकी ना जाने किस कारण से मिट्टी खराब हो जावे, बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, और कोई हार्ट अटैक हो जावे, उपड़ के कितने जरा सा गिर जा तो कनपट्टी लाग जा, लागते मर जा। परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिस शरीर में तू जीवित रहना चाहता है, तुझे चिंता होनी चाहिए कि तू इसमें जीवित रह कैसे रहा है। कबीर साहब के पास एक भक्त कहने लगा, भगवान मुझे मेरे शरीर में मुझे मृत्यु का डर लग रहा है, मेरा बहुत तकलीफ है। परमेश्वर ने कहा, बेटा तकलीफ तो तेरी ठीक हो जाएगी, पर मुझे ये डर लग रहा है तू इसमें जीवित कैसे है। तूने कभी सोचा इसमें तू जीवित कैसे रह रहा है, ये चल कैसे रहा, ये पांच तत्वों का पुतला, इसमें कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो ये स्थायी हो सके, इसका कोई किसी प्रकार से प्रोटेक्शन हो सके, और जिससे इसका बचाव रहे उसको तू भूल चुका है, परमात्मा की भक्ति नहीं करते। इस पांच तत्वों से बने हुए पुतले का वास्तविक जो लाभ हमें लेना है, इस मिट्टी से सोना उपजाना है तो ये मिट्टी अनमोल है, और नहीं तो ये मिट्टी एक नए पैसे की नहीं है। क्या बताते हैं परमात्मा के, पशु के चाम की पातन बन जा नौबत और नंगारा, नरदेही कछु काम न आवे जल बुझ हो जा छारा। नहीं तो ये पांच मनुष्य का जो शरीर है ये सबसे व्यर्थ है। जैसे पशु के चाम की जूते बन सकते हैं, ढोल नगारे का ये ऊपर का एक कपड़ा चमड़ा लगता है, वो भी कुछ न कुछ बाद में काम आ जाता है ढोलक पोलक बजान में, लेकिन ये तेरा चाम तो वो काम भी ना, अगर भक्ति ना करीता है। इस मिट्टी का अगर तूने लाभ उठाना है तो केवल परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म और संतों की शरण, ये इसका मूल उद्देश्य रखते हुए अपना दैनिक कार्य को भी कीजिए। और इसको कब तक रखना चाहता है, आज चाहे किसी की आयु 90 वर्ष की होगी, उसकी आशा भी ये रहती है कि एक अपने गांव में ना 115 साल जी गया था, अभी तो और शायद 10-5 वर्ष बात बन जा, उठ के बैठा नहीं जाता, दिन में 100 बखासी उठे, 10 कदम चल दे सांस चढ़ दिया, फिर भी नो आस्था है, ये आस्था है कि अभी तो 10 वर्ष तो और भी शायद बात बनी रहे, तो ये आशा नहीं समाप्त होगी जीवन की, ये तो मालिक ने प्रबंध करना पड़ता है कब तेरा पीछा छुटावे इसे कबाड़ते। ये कुबाड़ है जब तक इसमें भक्ति नहीं करते, और 60-70 साल के बाद तो फिर ये आप पे वजन बन जाता है, ये 5 तत्व की मिट्टी अपने आप महसूस होने लग जाती है कि वास्तव में ये तो बात बिगड़ गई, कुछ भी कौन ही हो। इससे पूर्व हमने प्रभु की साधना आदि कर लेनी चाहिए, जिसके कारण हमारा बुढ़ापा भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से फिर ये गोडे नहीं दुखे, जोड़ा में दर्द नहीं हो, धीरे धीरे सारा सेटिंग हो जाएगी, और कोई छोटा मोटा कष्ट आएगा वो भी नॉर्मल यानी साधारण भाव से समाप्त हो जाएगा। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि चलो तू लंबी आयु मान ले, 100 वर्ष भी जी गया और भक्ति करी नहीं, मृत्यु तो फिर भी होनी है, और साधना ना करने से पुण्यात्मा ये सारा जीवन खो दिया, ये समय अनमोल आपका बर्बाद हो गया। इसलिए याद दिलाते हैं कि बालों की भीत पवन का खंभा, ये इतना कच्चा सांग बताया कि जैसे एक बालू रेत की दीवार बनाते हैं, उसके दोनों तरफ फट्टे से लाकर पानी भर दे, उसमें कूट छेद कर फिर रोक दे, फिर थोड़ी सी ऊपर बना दे, और वो काम चला उसी होती है, वो पानी वर्षा हो जा तो कट जा, को पशु का लात की लात लाग जा तो गिर जा, और ज्यादा तेज हवा चल पड़े तो उसमें स्कोरिंग होकर हुआ कट कट के सारी उड़ जा। तो कहते ये पवन ये बालू की भीत जैसा कच्चा तेरा ये शरीर और ये पवन से श्वास से ये खड़ा हुआ है, बालू की भीत पवन का खंभा कब लग खैर मनावेगा। फिर क्या बताते हैं, आजम तेरे घटने घेरे, यम के दूत आएंगे जब तिरान समय होगा, आते ही भक्तिहीन प्राणी के अंदर से जबान बंद कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता, संकेत से संकेत करता रहता है, और संकेत करते करते घरवाले तो यूं सोचे कि पिताजी ने कोई धन किसी को देना लेना होगा वो बताना चाहता है, और उसकी समस्या बनी हुई होती है, बहुत पीड़ा होती है। अंत समय में भक्तिहीन प्राणी का जब ये शरीर छूटता है, इतना दर्द होता है जैसे लाख बिच्छुओं ने एक दम डंक मार दिया हो। ये सत्कर मानना, संतों ने जो विचार दिए हैं यों का यूं बनता है, आंखों से पानी टट्टी और पैसा भी सपला तो उनका निकल जाता है। और जिन्होंने परमात्मा की भक्ति कर रखी होती है, विधिवत साधना कर रखी है, दान पुण्य आदि किए हुए हैं, उनका ये शरीर सेकंडों में निकल जाता है, उसको ये पीड़ा नहीं होती। और परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को सीने से लगाकर ले जाते हैं, जैसे बंदरिया ले जाती है अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए फिरती है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जावे जंजीर। जाना तो सभी ने है, मृत्यु तो हम सबकी होगी, लेकिन हमारी जो मृत्यु होगी वो ऐसी मृत्यु होगी फिर कभी नहीं होगी, और जो भक्तिहीन प्राणी है उनकी मृत्यु मृत्यु ही मृत्यु होगी, उनका जीवन नहीं होगा। कैसे, जैसे कुत्ता बन गया, ओके जीवन है, कोई जीवन नहीं, मृत्यु की ही फिर मृत्यु होगी, मृत्यु होते फिर नया जीवन जो शुरू होगा वो भी मृत्यु से बदतर ही होगा, गधा बन जाएगा, सुअर बन जाएगा। हम इस परमात्मा की सतभक्ति से, इस क्रिया से, इस कर्मी से हमारा या तो मानव शरीर ही होगा, और नहीं तो हम सतलोक चले जाएंगे। ये नहीं कि सदा ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि शाम को जो ये लगातार सत्संग सुनना पड़ता है आपको, क्योंकि ये महीने में आपने 2-3-4 ये लेक्चर, ये परमात्मा के प्रवचन सुनने को मिलते रहे, लगातार 1-2 वर्ष आप सुनते रहोगे, साथ में ये 7 धार्मिक पुस्तकें जो लिखी हुई इनको पढ़ते रहोगे, फिर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। और ये जो सत्संग अब चल रहा है ये फिर आपके बहुत ही आसानी से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि एक समय 2 घंटे होते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये अपना जो सिलेबस होता है ये कवर करने की चेष्टा ये दास करता है। उसमें दोनों तरह के सत्संग किए जाते हैं, एक तो प्राथमिक जो पहली बार सत्संग में आती है पुण्यात्मा, उनके लिए ये ए आ ए फोरे पल ये पढ़ाई जा रही है जाती है। और फिर उनके लिए जो पुराने भक्त हो गए हैं जिनको ये भी उनके लिए ये भी साथ काम करती हैं और साथ में उनको वो कोड वर्डों के माध्यम से भी सत्संग सुनाया जाता है। वो फिर सीगर पकड़ जाते हैं कि अब सतगुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं, कहां बोल रहे हैं। और प्रथम दूसरी तीसरी बार कोई सुनता है तो उसमें उसके मन में ये प्रवचन जो किए जा रहे हैं उनको शंकाएं उत्पन्न होने लग जाती है। अब जैसे चल रहा है कि जिन्हों हमारा जो जन्म होगा वो मनुष्य का ही होगा, अन्य प्राणी का नहीं होगा। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस परम पिता की इस तीन मंत्र के जाप की और साथ में ये प्राथमिक मंत्र आपको दिया जाते हैं, इनसे ये सबसे बड़ा बेनिफिट यानी एक न्यारा लाभ है। लेकिन ये ज्ञान भी आपने मध्य नजर रखना पड़ेगा कि इस जन्म को आगे ना होने दिया जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और अन्य साधनाएं जो लोग भक्तन कर रहे हैं, संतजन करा रहे हैं, उनसे तो वो बेनिफिट कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सारी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं, उनसे ना उनका कोई गति हो है, ना सुख हो है, ना उनका कोई लाभ हो है। इससे आपका मुक्ति नहीं होगी तो इतना लाभ होगा आपको वर्णन नहीं हो सकता। आप पृथ्वीपति भी बन सकते हो, नेक्स्ट जीवन आपका जिसने इस जीवन में और 10-5 वर्ष ये सदगुरु की साधना जो दास बता रहा है से कर ली, आपका मानुष जीवन में तो धोखा नहीं और लगातार कई भी हो सकते हैं। आप स्वर्ग में भी जा सकते हो, आप महास्वर्ग भी जा सकते हो, आप विष्णु जी के लोक भी जा सकते हो, वहां भी हजारों युगों तक रह सकते हो और फिर वापस यहां पर आओगे, आप पृथ्वीपति भी बन सकते हो, सारी पृथ्वी के शासक भी बन सकते हो, यह इतनी कमाई हो जाएगी। लेकिन ये कमाई हमने इस कमाई का हमने यहां पर ऋण उतारना था, उसको वो ना उतार के हम फिर इसकी मलाई खाना प्रारंभ कर देंगे। और जिस भी पवित्र धर्म में हमारा पुनर्जन्म होगा वो जो साधना हम कर रहे होंगे परंपरागत, वो सोच रहे होंगे कि साधना जो हम करें शायद इससे आज मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूं, इससे शायद मैं मंत्री बन गया हूं, इससे शायद मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं। नहीं, उसमें हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जीरो होता है, मान शून्य होता है, क्योंकि वो तो पिछली मलाई हम खा रहे होते और वो जीवन उसका बहुत अच्छा निकल जाता है और वो उसी साधना को करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर नेक्स्ट जीवन उसका 84 लाख योनियों में चला जाता है, क्योंकि ये पुण्य कमाई जो हमारी है 1, 2, 4, 10, 5 वर्ष में जन्म में समाप्त हो जाएगी। और उस दौरान फिर परमात्मा ने मेहर नहीं बख्शी, कोई संत नहीं भेजा, तो फिर 84 लाख योनियों में ये प्राणी चले जाएंगे। इसलिए हमने अब ये ज्ञान हो गया, अब इस समय को इस जीवन को आगे नहीं बढ़ाने देना। मान लीजिए आप नेक्स्ट जीवन में और प्रधानमंत्री भी बन गए, ठीक है, प्रधानमंत्री जो बन जाता है वही जानता है उसके सिर में कितना दर्द होता है, कितना आनंद मना रहा होगा। और उस इसने जिम्मेवारी की जो पोस्ट पद पर जब विराजमान होने के बाद एक पल की चैन नहीं, प्राणी को एक पल की भी चैन नहीं है। ठीक है, नाम प्रधानमंत्री बहुत ऊंचा और बहुत ही योग्य पद होता है, लेकिन उस जीव को सुखति नहीं। उसकी नियत होती है कि मैं शुभ कर्म करूं, उसकी नियत होती है कि प्रजा का अच्छी तरह पालन करूं, लेकिन काल बीच में और खुट्टे साथ गाड़ कर रखे, वो चाहता हुआ भी नहीं कर सकता उस कर्म को, शुभ कर्म को, क्योंकि ऐसी समस्याएं बीच में किसी दूसरे के माध्यम से पैदा करवा देता है। तो कहें अरमान लीजिए प्रधानमंत्री अच्छी आत्मा के हैं और बढ़िया शुभ कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं ठीक कर रहे, तो वो क्या लेकर जाएंगे। मान लीजिए एक फैक्ट्री लगा लेंगे, 20-30 करोड़ रुपया जमा करा देंगे बैंक में, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, पशु बन जाएंगे। यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि पुनर्जन्म की आस मत करना, हे भगवान फिर जन्म मत देना मेरे प्रभु, इसी जन्म में अपने इस मिट्टी के हाथ भी रगड़ दो उस परम पिता के चरणों में, इसकी भक्ति और सेवा के अंदर यहां से पीछा छुटवाओ जब बात बनेगी। यहां पर कोई प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते मन सबका किया विवेका हो, सबका तन दर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते मन सबका किया विवेका हो, सबका भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया के दृष्टि बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया के दृष्टि बै सुख देव ने दुख के डर में गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा कृष्णा सब में व्याप कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो, तंदर दुखिया उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, भाई साथ कहूं तो जग ना मान या झूठ कहीं ना जाई हो, साथ कहूं तो जग ना मान झूठ कहीं ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये रहा चलाई हो, जिन तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सब भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया ये रंक दुखी बपर कह कबीर और सब दुखिया संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया ये रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर दुखिया कोई न देखा, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका
परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर हमें ये याद दिलाते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी, इस ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। इस पांच तत्व से बनी हुई काया के अंदर जो प्राणी है इस तन में, हमने कोई भी यहाँ सुखी नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा बताना चाहते हैं कि सच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कहीं ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो, इस तीन लोक के प्रभु सतीथी उत्पत्ति सतीथी और संहार करने वाले ये स्वयं भी महाकष्ट में है। भगवान विष्णु जी को श्राप लगा नारद जी से, श्री रामचंद्र जी रूप में आए। श्री रामचंद्र जी रूप में उन्होंने कोई सुख नहीं, कोई भी सुख जीवन में नहीं प्राप्त हुआ। जवान हुए, शादी हुई, वनवास हुआ, वनवास में पत्नी का अपहरण हुआ। 12 वर्ष तक उस अपनी धर्म पत्नी को छुड़वाने के लिए, रावण की कैद से निकलवाने के लिए संघर्ष रहा। आने के बाद पत्नी का, अपनी धर्म पत्नी का स्वयं ही निष्कासन कर दिया। बच्चे कहाँ, स्वयं कहाँ, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो बेशक वो विष्णु जी अवतार थे। तो कहने का भाव यही है, फिर उसी वही परमात्मा फिर श्री कृष्ण रूप में आए। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, जन्म से ही कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हुआ, कभी केसी मार रहा है कोई, कभी चानोर मारने आ रहा है, कभी पूतना, कभी जरा सिंह, कभी शिशुपाल, आखिर में मथुरा भी त्याग कर प्रभु ने द्वारका में समुद्र में जाके द्वारिका बना करके शरण लेनी पड़ी। अंत में जब मृत्यु हुई प्रभु की, एक शिकारी ने विषाक्त तीर मारा प्रभु के सामने ही, 3 लोग के स्वामी के सामने ही पूरा यादव कुल विनाश हो गया, आपस में लड़ मरा, बेटे और पोते भी समाप्त हो गए। या परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि सच कहो तो जग ना माने, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बहुत ही सुप्रीम पावर मानकर आश्रित हो चुके। इनको अजन्मा अजन्मा अजर अमर अविनाशी कोई मात पिता इनके नहीं है, सामने लोकवेद से सुना हुआ है। वास्तव में इनकी हिस्ट्री शीट, इनके पवित्र जो जीवन चरित्र है, अर्थात इनकी पुराण है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण आदि में आप पढ़कर देखिएगा, देवी भागवत महापुराण में। ये तो नाशवान स्वयं स्वीकार करते हैं, हम नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। इनके माता पिताजी का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, और ज्योति निरंजन शिव महाशिव, ये काल, ये ब्रह्म, ये इनके पूज्य पिताजी हैं। ये काल कौन है, ये ब्रह्म कौन है, ये काल है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का, इसको साप लगा हुआ है। अब ये ज्ञान हमने सुना नहीं तो एक बार ऐसा लगता है जैसे दंत कथाएं हो, नहीं, ये बिल्कुल सच कथाएं हैं और ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। इनमें से 70% तो हमारे पुराणों में प्रमाण है, और फिर ऊपर की जो 30% नहीं है वो कथा, वो परमात्मा ने स्वयं आकर के उन्हें बताया है। ये सारा मिलकर के सूक्ष्म वेद, सौषम वेद, अर्थात 5वें वेद में ये सारा ज्ञान जो का तो लिखा हुआ है, और सब शंकाओं का उसमें समाधान हो जाता है, सब निर्णायक ज्ञान उसमें उपलब्ध है, प्राप्त होता है। तो क्या बताना चाह रहा है कि सच कहो तो जग ना माने, क्योंकि आज से 550 वर्ष पहले जो परमात्मा यही ज्ञान दिया करते, जो दास आधुनिक के अमृत बरसाया हुआ अपने आपको खुद की प्यारी आत्माओं तक पहुंचा रहा है, आज से अगर 20-50 वर्ष पहले भी आज ये दास बताने लग जाता तो कोई भी इस बात को ऊपर नहीं आने देता। सब यही कहते झूठ बोलता है, कहीं नहीं लिखा, किसी वेद में, किसी पुराण में नहीं लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता। लेकिन अब परमात्मा ने ऐसे समय में ये प्रयास किया है अपनी प्यारी आत्माओं को अपने बारे में जानकारी देने का, कि अब कोई ये नहीं कह सकता वो झूठ बोल रहा है, और कह रहा है तो तुरंत यहां पर हाथों हाथ सच्चाई लेकर जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रोजेक्ट आपको मिलता है, और प्रश्न नंबर और उसके अध्याय नंबर भी आपके सामने होते हैं। बुद्धिजीवी प्राणी तुरंत देख करके शांत हो जाते हैं। उन आग लगाने वालों की अब पार नहीं बसा रही, उनकी दाल नहीं गल रही। पहले धर्म या समाज के तोहीन हानि होने के कारण आपस में हमें लड़ा मारते थे, अपना उल्लू सीधा कर लेते थे, हम लड़ते रहते थे उनकी, वो जो की तो वो बकवाद चलती रहती थी। अब परमात्मा ने ऐसे समय में ये कार्य शुरू किया है, अब सब ठीक हो जाएंगे, किसी की दाल गलेगी नहीं, सब बहन बेटी भाई बुजुर्ग सब शिक्षित हैं,
और हम अपने उस मूल मालिक को पहचान लेंगे। अब कौन है वो परमात्मा जिसकी हमने शरण में जाना चाहिए? आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछताएगा, बालू की भीत पवन का खंभा फिर कबल खैर बनाएगा। अब कौन से भगवान की शरण में चले? यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश का आश्रय लेकर उनकी पूजा करते हैं तो वो नाशवान, उनकी मृत्यु। यदि हम ब्रह्म की साधना करते हैं तो ब्रह्म भगवान गीता जी में बोल रहा है चौथे अध्याय के पांचवें मंत्र में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहता कि अर्जुन ये मत सोच कि हमारा और तुम्हारा अभी पहली बार जन्म हुआ है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कि ये मत सोच के तेरा और हमारा सैनिकों का पहली बार हम जन्म हुआ है, इससे पहले भी हम थे और आगे भी होंगे और वर्तमान में भी है। फिर कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्व भाव से उस परम पिता की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान, शाश्वत माने सदा रहने वाले अविनाशी लोक सतलोक को प्राप्त होगा और परम शांति को प्राप्त होगा, फिर जन्म मृत्यु और दुख तुझे नहीं होगा। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, उसको कैसे पाया जा सकता है? वही भेद बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे और फिर इस दास के ऊपर मेहर की ड्यूटी ला दी या एक चौकीदार दे दिया आपको जगाने का। ये अमृत पहले ही हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, लेकिन ये दास को खजाने की चाबी देकर एक सुखी शाबाशी दे दी प्रभु ने, और जो आप तक ये पहुंचाई जा रही है, जो इस खजाने का हिस्सेदार बन जाएगा वो मालो माल हो जाएगा और जो वंचित रह जाएगा वो कंगाल हो जाएगा। क्योंकि अब कलयुग में तो भक्ति 1% भी नहीं शास्त्र अनुकूल रही, सब संतों ने अपनी अपनी दंत कथा बनाकर अपना अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया, और यही काल चाहता था, यही काल ने करवाना था कि कलयुग में परमेश्वर कबीर आएगा और फिर अपना कोई दास भेजेगा। उससे पूर्व ही सब शास्त्र विहीन साधना पर आधारित लोक वेद दंत कथाएं सतलोक की सुना सुना के पुण्य आत्माओं को भ्रमित कर दिया जाएगा, और वो कर दिया जा चुका है। लेकिन परमेश्वर भी पूर्ण ब्रह्म है, वो अपने बच्चों तक अपनी सत भक्ति को, सत ज्ञान को अवश्य पहुंचाकर छोड़ेगा। उसने वायदा कर रखा है कि धर्मदास तो लाख दुआई ये सार शब्द कहीं बाहर न जाई। धर्मदास जी से कहा था कि ठीक है तू मुक्ति पा, अपना नाम ले, सार नाम तुझे देता हूं, पर इसको बाहर मत बताना। यही कसम गरीबदास जी से खिलाई थी, यही कसम श्री नानक साहेब जी से खिलाई थी, यही कसम श्री दादू साहेब जी से खिलाई थी कि तुम नाम जपो पर ये अभी सार नाम किसी को बताना नहीं। अब वो समय आ गया है कि धर्मदास तो लाख दुहाई ये सार शब्द कई बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसना तिरही। कहा था कि अगर उसने कहा था कि अगर अब ये सार नाम किसी संत नकली इन काल के दूतों के हाथ लग गया तो ये भी यही मंत्र देना शुरू कर देंगे, और जब हमारा भक्ति युग आएगा उस समय ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, ये कोई निर्णय नहीं कर पाएगी, भिन्नता नहीं रहेगी कि कौन सी साधना ठीक है कौन सी गलत है, किससे प्रमाण करे। अब सद ग्रंथ हमारा प्रमाण है, पवित्र गीता जी में प्रमाण है, ओम तत् सत इति समर्थे ब्रह्मणे त्रिविध इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे। यही पवित्र श्याम वेद 822 नंबर संख्या में कि उस परमात्मा का वो कबीर परमात्मा है, और 3 नाम का जाप देकर मंत्र देकर अपनी प्यारी आत्माओं को यहां से काल के जाल से उन निकालता है, और उसकी उम्र भी बढ़ा देता है, उसकी आयु भी बढ़ा देता है वो परमात्मा अपनी रजा से, अपने कोटे थे, अपने खजाने थे। क्योंकि आज से 550-600 वर्ष पूर्व अपारे अपने सभी पूर्वज अशिक्षित थे, और ये चतुर लोगों ने शिक्षा संस्कृत का एक भाषा विशेष का ज्ञान होने से अपने आप को विद्वानों की पदवी प्राप्त कर ली थी। अब ये पवित्र वेदा और पवित्र गीता जी का ज्ञान अक्षर ज्ञान से नहीं, ये तत्व ज्ञान से ही जाना जा सकता है। इसमें कोई भी अक्षर अक्षर ज्ञान विशेष नहीं है। जैसे आपको दोहों के माध्यम से कबीर परमात्मा या आदरणीय गरीबदास साहेब जी की वाणी, आदरणीय गुरु नानक देव जी की वाणी, आदरणीय दादू साहेब जी की वाणी, इसमें बहुत ज्यादा सांकेतिक शब्द होते हैं और उन दोहों को ऐसे ही ये वेद हैं। वेदों में जो वाक्य हैं ये पूर्ण नहीं है, इनमें काफी 90% कोड वर्ड हैं और ये भी पद्य भाग के अंदर हैं। और इनको खोलना केवल गद्य भाग का ज्ञान प्रथम होना चाहिए, तब ये पद्य भाग खोला जा सकता है, जाना जा सकता है, नहीं तो इसकी कोई चाबी नहीं है। और वो गद्य भाग कौन सा है, जिसमें सृष्टि रचना का ज्ञान और कबीर परमेश्वर की महिमा का पूर्ण रूप जानकारी होनी चाहिए, तब ये पवित्र वेदों और पवित्र गीता जी या सभी महापुरुषों की जिन्होंने परमात्मा पाया उनकी वाणी को हम समझ सकते हैं, उनके अनुसार हम अपना आचरण कर सकते हैं। अभी तक परमात्मा के का कोई निर्णय किसी के पास नहीं था, केवल उस परमेश्वर से के अतिरिक्त पवित्र वेदों में लिखा वो सही है, पवित्र कबीर अमृत वाणी में कबीर वाणी में लिखा वो भी सही है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन 5-6 महापुरुषों की वाणी दास ने पढ़ी है, उनमें भी ज्यों का त्यों परमा, उनको उनके अतिरिक्त अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जो अमृत वाणियां हैं या उनके द्वारा रचे सदग्रंथ है शास्त्र है वो पूरे खरे नहीं उतरे, वो पूर्ण रूप से नहीं खरे उतरे। हाँ इतना तो सभी कहते हैं भगवान की भक्ति करो, परमात्मा के भजन के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जो भक्ति नहीं करता उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये तो एक साधारण सा ज्ञान आम ही संत और महापुरुष की वाणी में मिल जाता है। परमात्मा की परिभाषा के बारे में वो सब शास्त्र पवित्र वेदों और पवित्र गीता जी और उन महापुरुषों की वाणी से विपरीत ही ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने परमात्मा पाया है। कैसे, क्या बताते हैं कि परमेश्वर निराकार है और ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। अब कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर 2 पंथ चले हैं, एक राधा स्वामी पंथ, एक धनधन सतगुरु पंथ। ये सतपुरुष तो बताते हैं, सतपुरुष भी बताते हैं, सतलोक भी बताते हैं। कबीर साहब की एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर ये 32 कली का एक शब्द है। परमात्मा ने 0 से लेके और लास्ट तक की सारी कहानी बता रखी है, वो अपनी महिमा भी बता रखी है और काल की नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक की भी व्यवस्था उसमें बता रखी है। लेकिन इन महापुरुषों ने उस शब्द को पढ़ा सुना और उसके आधार पर अपनी सोच के आधार से दंत कथाओं की कथाएं अलग से पुस्तकें बना डाली और अंत में परमात्मा सतपुरुष को निराकार बता दिया। कबीर साहब की वाणी को पढ़कर यह तो बता दिया कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना तेज है एक रोमकूप का सतपुरुष का सतलोक में, और अलखलोक में है कि अरब सूर्य मिला दे अरब चंद्रमा, अलख पुरुष रूप में परमात्मा है उसकी एक रोमकूप की शोभा है, और अगम लोक में खरब सूर्य खरब चंद्रमा मिला दे इतनी रोमकूप की इतना तेज है, और अनामी पुरुष रूप में परमात्मा है और उसकी एक रोमकूप की जो है शंख सूर्य मिला दे शंख इतनी तेज है, इससे भी ज्यादा तेज है, और फिर भी निराकार बता रहे हैं वो, फिर भी परमात्मा को निराकार बता रहे हैं। ये कबीर साहब की वाणी का तो ज्यों का तो विवरण दे दिया और लेकिन अपनी सोच से फिर भी वहां परमात्मा को निराकार और आत्मा को परमात्मा में समावेश बताया है। ये लोक वेद है, ये बिना अनुभव की कथाएं हैं, उनका कोई उपलब्धि नहीं महापुरुषों को। और कबीर परमेश्वर को एक संत बताया है इन महापुरुषों ने, एक संत बताया है, एक भक्त बताया है, और जिन्होंने परमात्मा को पाया है उन्होंने क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहेब की कथा आपको कल सुनाई थी। उन्होंने क्या बताया है, आंखों देखा हाल बताया है। सब पदवी के मूल है वो सकल सिद्ध है तीरी, दास गरीब सत पुरुष बजो भाई अवगत कला कबीर। सब पदवी के मूल है, ओए होए, सब पदवी के मूल है और सकल सिद्ध है तीर, सिद्धि सभी सिद्धियां उसके उन्हीं के आश्रित है। तीर माने किनारे पे, उन्हीं के आश्रय हैं, उन्हीं के पास है, सब सिद्धि भी उन्हीं के पास है और सब पदवी के मूल है वो सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सत पुरुष बजो भाई अवगत कला कबीर। सब पदवी के मूल है। आदरणीय आदरणीय श्री राम स्वामी रामानंद जी महाराज ने क्या कहा है, तुम साहब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हमसे, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंसे, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे आए हो मग जो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलन हारे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। सौ प्रमाण ले सकते हो, परम पिता कबीर साहेब है, शरीर है उसका नाम कबीर है और अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, सैकड़ों प्रमाण तो वेद बता रहे हैं, पवित्र वेद बता रहे हैं। क्या बताया, सब पदवी के मूल है, आदरणीय गरीबदास जी बता रहे हैं, और सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। दादू साहब ने क्या बताया है, आदरणीय दादू साहब ने बताया है, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण क्या कहो मुझे कैतन आवे पारे, जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। आदरणीय मुलुकदास साहिब ने क्या कहा, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, काशी तज गुरु मगहर पहुंचे वो दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुंचे वो दोनों दीन के पीर, कोई गाड है कोई अग्न जरावे ढूंढा ना पाया शरीर, तो जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मने साहेब नाम कबीर। दास मलोक सलोक कहते हैं खोजो हो खसम कबीर, जपोरे मने साहेब नाम कबीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपोरे मने साहेब नाम कबीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। आदरणीय धर्मदास साहब जी कहते हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए, सतलोक से चलकर आए कट्टर यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर, आज मोहे सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कटर यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सत शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज हिंदू के तुम देव कहाई, हिंदू के तुम देव मुसलमान के पीर, आज दियो जी कबीर, आज मोहे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की केवल नयो पर तीर, आज मोहे दर्शन, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। आदरणीय गुरु नानक साहब जी क्या कहते हैं, एक अर्ज गुप्तम पेश तोतर तो दर कून करतार, ओए होए हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार,